तो फिर आगे कहेंगे जिहड़ा प्रारब्ध है वह बाकी रहिंदा फिर भी वह भुगने पवेगा। तो फिर वह पुछदे आ भी तुसीं कि पहलां तो क्या सी सारे नष्ट हो जाते हैं हुण तुसीं कह रहे प्रारब्ध भुगना पैंदा तो नष्ट कादा होया फिर। कहिंदा ज्ञानी का नष्ट ही है। क्यों नष्ट क्यों बई? वह कह रहे कर्म तो शरीर ने किए है ना, तो शरीर भुगत रहा है। ज्ञानी ने तो पहले निश्चय कर लिया भी मैं शरीर नहीं हूँ तो वो वास्ते तो नष्ट ही हो गए, वो वास्ते तो नष्ट ही हो गए। ये तो सानू दिखाई दे रहा हाय हाय कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तत्तियां लोहां ते बैठे कितना दुख हुंदा होगा, तत्ती रेता पै रही है तो दुख हुंदा तो वह हाय है ना कर दे, जे कर दे भी तो तां वी की सी, वो तो मुक्त सी। ताँ ही भुलनी जो शरीर ना संबंध ही नहीं है। जो हुण आप इत्थे बैठे हाँ साडा ये टेबल दे नाल कोई संबंध नहीं शरीर दे नाल, ये टेबल टुट भी जाए तो शरीर नूं की दुख होएगा। तो जो आप शरीर ही नहीं ये ना ये टुट भी जाए रवे ना रवे तो की दुख होएगा। जिहदे नाल ममता है उहदे नाल दुख होएगा, जिहदे नाल ममता नहीं है ना उहदे नाल दुख भी नहीं होएगा। किथे चल गया? हाँ जा के यही है ना, जाके मंद बोध है सो भी मनन और निध्यासन। हाँ जो कदाचित ऐसे कहें राग द्वेष आदि के अंतःकरण के सही धर्म है, जितने अंतःकरण है उतने राग द्वेष का सर्वदा नाश ज्ञानवान के भी होवे नहीं। तिन राग द्वेष ते ज्ञानवान का भी अंतःकरण चंचल होवे हैं, जाते चंचलता दूर करने वास्ते ज्ञानवान भी उपासना करे। ये पूर्व पक्षी कह रहा जो ऐसा कहें की कहें, वो कह रहा राग द्वेष जिहड़े अंतःकरण के सहज धर्म है, जितनी देर अंतःकरण है उतनी देर राग द्वेष रहेंगे ही रहेंगे, वो ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है। ये शंकावादी कर रहा सच नहीं समझ लेने, शंकावादी कर रहा है जो मान लो ज्ञानवान है कोई पुरुष ज्ञानी है तो जितना उसका अंतःकरण तो नष्ट नहीं होया, अंतःकरण तो बनया ही अंदर, तो जिन्ना चिर अंतःकरण है अंतःकरण के सहज धर्म किहड़े राग द्वेष आदि, वो राग द्वेष भी चलते रहेंगे ज्ञानी दे, ते राग द्वेष चलणगे तो चंचलता मन में हो ही जाएगी है ना। तो वो वास्ते वह चंचलना दूर करने वास्ते उपासना करे ज्ञानी भी, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। अब ये उत्तर दे दे हैं, यद्यपि ज्ञानी को अंतःकरण की चंचलता से विदेह मोक्ष हानि नहीं। देखो वो कहिंदा उहदा अंतःकरण चंचल भी हो जाए कुछ भी हो जाए पर उहदी जिहड़ी विदेह मुक्ति है ना उहदी हानि नहीं हो सकती, क्यों तो ज्ञान एक बार नष्ट हो गया जदों उहने देख लिया भी मैं शरीर नहीं हूँ मैं ब्रह्म हूँ तो उदों ही वह तो मुक्त हो गया। अब बाद च मन चंचल होवे च ना होवे फिर उत्ते की फर्क पवेगा, ठीक है ना। यद्यपि ज्ञानवान को अंतःकरण की चंचलता से विदेह मोक्ष में हानि नहीं, तथापि चंचल अंतःकरण में स्वरूपानंद का बान होवे नहीं, जाते चंचलता जीवन मुक्ति विरोधी है, जाते जीवन मुक्ति के निमित्त चंचलता दूर करने वास्ते उपासना करे। ये फिर उपासना वास्ते जोर दे रहा है, क्योंकि ये कादे वास्ते ऐसे कह रहे हैं, ये जिन्ना दा हठ है ना हठ कि आपां कर्म ही करना है उपासना ही करनी है ज्ञान वाल जाना ही नहीं, उन्होंने समझाने वास्ते है। सो बने नहीं, देखो अब कह रहा है सिद्धांती बोल रहा ग्रंथकार, सो बने नहीं काहे ते यद्यपि दृढ़ बोध जाके अंतःकरण में हुआ है। देखो दृढ़ बोध पक्का काहे ते यद्यपि दृढ़ बोध जाके अंतःकरण में हुआ है, ताके समाधि और विक्षेप समान है। वो समाधि च रहे चाहे विक्षेप च रहे, चाहे अखा मीट के बैठा होवे चाहे खोल के बैठा होवे, चाहे काम कर रहा होवे चाहे ना कर रहा होवे, उस वास्ते सारे समान। उहदा काम तो हो गया बई, उहदा काम तो जदों भ्रांति नष्ट हुई उदों ही हो गया, मुक्ति दा वाला काम सी, फिर हुण उहनूं की करना बाकी की रह गया। तुसीं एक बार कणक बीज ली छट्टा देता खादा जो दवाइयां दवाइयां पाउणियां, दस दिन बाद फिर बीजण जाओगे, वो तो हो गया एक बार जिहड़ा करना सी, यही है वो। सो बने नहीं काहे ते यद्यपि दृढ़ बोध जाके अंतःकरण में हुआ है, ताके समाधि और विक्षेप समान है, उन्हों एक बराबर है, ठीक है। जानते अंताकरण की निश्चलता के निमित्त किसी जतन का आरंभ विद्वान को बने नहीं, तथापि विद्वान की प्रवृत्ति और निवृत्ति प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध कर्म का प्रारब्ध कर्म सर्व का विलक्षण है। वो अंदर ज्ञानी जो हो गया, ज्ञानवान हो गया, बाकी जेडे कर्म है वो प्रारब्ध के अधीन है। वो प्रारब्ध उन खिंच खिंच के ले जाएगी उधर, चाहे कुछ हो गए, उन फिर वो बंधन नहीं डालनगे क्योंकि वो भोगने पैणगे। हम सुखदेव जी जेडे सी उन्होंने कैसी प्रारब्ध सी? विलक्षण निवृत्ति परक, कुछ किसी ना संबंध नहीं सी। और जनक राजे की कैसी प्रारब्ध सी? राजभोगण की। वो राजभोगदार है, वो लंगोट नंगे तुरदे फिरते रहे, पर दोनों की मुक्ति में की अंतर सी? कुछ भी नहीं, दोनों मुक्त सी। अपनी अपनी प्रारब्ध है। एक लंगोटी लगा के पेड़ के नीचे बैठा है वो भी मुक्त है, एक सिंघासन पर बैठा है वो भी मुक्त है। मुक्त तो जो ज्ञान हो गया उदो ही मुक्त हो गए, वो चाहे सिंघासन पर बैठा है चाहे कितने बैठा। राजा शिखर ध्वज की फर्क है? राजा शिखर ध्वज सी ओदी पत्नी चौड़ाला सी, दोनों ज्ञानवान सी। 10,000 वर्ष फिर उन्हें आकार आके राज किया, पहला राज छड़ के चल गया सी राजा। तो जो ज्ञान हो गया, पत्नी ने अपने पति नू ज्ञान कराया, तो जो ज्ञान हो गया पति नू, तो फिर उन्हें दस्या भी मैं ही सी तेनू ज्ञान कराने वाली, रूप बदल बदल के वो सामने जाती रही, कभी किसी का रूप बना ले देवत्या का बना ले, कभी किसी का। जो ज्ञान हो गया तो फिर उन्होंने कहती तू हूँ समाधि लगा के देखना तेन ज्ञान किन्ने कराया। तो जब उन्हें समाधि लगा के देखा तो उन्हें सोचा वह हुई थी यही सारे रूप बदल के होंगी रही है। फिर उन्हें कहा भी तू तो मेरी गुरु है। उन्हें कहा नहीं गुरु नहीं, मैं तो मेरी पत्नी ही है, मैं तेरे दासी हाँ। पर हूँ तू मैं ये दस, हूँ तेन राज छड़न जा करन कोई प्रयोजन है तेरा? तेरी लाभ हानि है? जे तू छड़ दे तेरा की नुकसान है? जे तू कर ले तेन की लाभ है? आंदा मैं कोई लाभ ना, हानि नहीं। आंदी चल फिर उतो फिर आके 10,000 वर्ष राज किया। आंदा फिर मैं तो राजा हूँ, मैं ऐसे कैसे जाऊँगा? आंदी ले मैं हुणे सेना का निर्माण कर दी, संकल्प की सेना ही सेना खड़ी होगी। योग वशिष्ठ में एक कथा है, संकल्प सिद्ध हो जाए जदों जेड़ा संकल्प रहा वही हो जाएगा। ठीक है, किसी विद्वान का यही है ना, किसी विद्वान का जनक आदि की न्याय भोग का हेतु प्रारब्ध है। किसी विद्वान जो ज्ञानी पुरुष है, जैसे जनक का दृष्टांत देता, वह की है भोग निमित्त प्रारब्ध है, भोग भोग रहा, सुख भोग रहा है अपने। और किसी का सुखदेव वामदेव आदि की न्याय निवृत्ति का हेतु प्रारब्ध है, वो निवृत्ति परक है, पेड़ थले बैठे है, वो सिंघासन पर बैठा है। तो यदा यह थोड़ी अंत अर्थ हो गया भी वह मन चंचल हो गया, वो पेड़ थले बैठे है तो वह मन उन्होंने ज़्यादा मुक्ति मिलेगी उन्होंने घट मिल जाएगी? नहीं, मुक्ति बराबर है, मुक्ति में कोई फर्क नहीं है। जाके भोग का हेतु प्रारब्ध है ताकू तो प्रारब्ध से भोग की इच्छा और भोग का स्थान का जतन होवे है। वो भोग जेदा जेड़ा जेड़ा प्रारब्ध में दाना पानी जिथे जिथे जड़े जड़े स्थान में बैठना जाना है लिखा है, वो तो उन्हें प्रारब्ध खिंच के लै जाएगी अपने आप, वो इच्छा होंगी रहेगी वो इतनी बस, ज़्यादा नहीं। जाके निवृत्ति का हेतु प्रारब्ध होवे ताकु जीवन मुक्ति के आनंद की इच्छा होवे है और भोग में गलानी होवे है। जेड़ा जीवन मुक्त है पेड़ थले बैठा है उन्हें की लेना, उन्हें तो किसी ने गल करनी भी हो तो भी भारी लगती है ना। जीवन देखो ना, भोग में गलानी होवे है कोई सुख की इच्छा ही नहीं है। जाकू जीवन मुक्ति के आनंद की इच्छा होवे सो ब्रह्माकार वृत्ति की आवृत्ति में निमित्त वेदांत अर्थ का चिंतन ही करे, उपासना नहीं। वो कहता जिन्हों जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद वास्ते उपासना तो करनी नहीं, जे करना है तो क्या करो? वेदांत का चिंतन करो, उदने ही सारे काम बन जाएंगे। काहे ते अंतःकरण की निश्चलता मात्र से ब्रह्मानंद विशेष प्रकार से भान होवे नहीं, किंतु ब्रह्माकार वृत्ति से ही होवे है। सो ब्रह्माकार वृत्ति वेदांत चिंतन से ही होवे है, उपासना से नहीं। अब ब्रह्माकार वृत्ति बनाओगे तो क्या उपासना करनी पड़ेगी? हुण तुसी बोलो ना मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये उपासना थोड़ी है, ये तो वेदांत वाक्य का चिंतन है। अंताकरण की चंचलता भी विद्वान को वेदांत के चिंतन से दूर हो जावे है। जो अंताकरण चंचल है तो ये भी वेदांत वाक्य से दूर हो जाएगा। सारे काम वेदांत चिंतन से दूर हो जाएंगे भाई, ठीक है ना। जाते अंताकरण की निश्चलता के निमित्त भी उपासना में प्रवृत्त होवे नहीं। इस रीति से दृढ़ बोध जाके होवे है ताकि कर्म उपासना से प्रवृत्ति होवे नहीं। और दृढ़ अज्ञान यही है ना, दृढ़ ज्ञान की और उत्तम जिज्ञासु को कर्म उपासना में अधिकार नहीं। देखो जो दृढ़ ज्ञान हो गया जिसको उनु, और उत्तम जिज्ञासु जो है वो तो कर, हाँ दोनों ही है ना। जो दृढ़ हो गया किसी नु ज्ञान, जहाँ अदृढ़ कच्चा है, जहाँ मंद जिज्ञासु है, जहाँ उत्तम जिज्ञासु, वो तो कर्म करे ही ना, वो तो कर्म उपासना दे विच ना पवे, वो की करे, यही चिंतन करे मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, बस ये नाल ही सारे ही मसले हल हो जाएंगे वो, ठीक है ना। और जिदा अंताकरण मलिन है वो कर्म उपासना में लग जाए, ठीक है ना। जाके मंद बोध है सो भी मनन और निध्यासन ही करे, देख लो, जाको मंद बोध है सो भी मनन और निध्यासन ही करे, कर्म उपासना नहीं, कर्म उपासना ना करे। क्यों? काहे ते मंद बोध जाको होवे है सो उत्तम जिज्ञासु है। प्रधान जी जिन्हों मंद बोध भी हो गया वो गिनती केड़े च आ गई, उत्तम जिज्ञासु, सर्वश्रेष्ठ जिज्ञासु है। ऐसे थोड़ी मंद बोध हो जाएगा, पूरा ज्ञान नहीं हुआ, थोड़ा तो हो ही गया, तो कौन ओदी गिनती केड़े च आ गई? उत्तम जिज्ञासुआं दे विच जिज्ञासु मैंने ज्ञातम इच्छा इति जिज्ञासा, जानने की जो इच्छा है, मैं कौन हूँ ये जानने की जो इच्छा है उन्होंने कहते जिज्ञासु, तो उत्तम जिज्ञासु सारे ना श्रेष्ठ, ठीक है ना। ता उत्तम जिज्ञासु को मनन निध्यासन से बिना अन्य कर्तव्य नहीं, वो खाली यही दो काम करे, मनन और निध्यासन। जह वार्ता शरीरक में सूत्रकार और भाष्यकार ने प्रतिपादन करी है। शरीरक मैंने शरीरक मास वेदांत शास्त्र, सूत्रकार मैंने व्यास भगवान, और भाष्यकार मैंने भगवान शंकराचार्य। विद्वान को मनन ध्यासन भी कर्तव्य नहीं। जो विद्वान पुरुष है, विद्वान मैंने ज्ञानवान, ये विद्वान दूसरा नहीं ले लेना, जिन जिन्हों ज्ञान हो गया उन्हों ले रहे, उन्हों कह रहे विद्वान। विद्वान मनन ध्यासन भी कर्तव्य नहीं। जो ज्ञानवान है उन्हों तो ना मनन की जरूरत ना ध्यासन की, वो तो बस सारे काम कर बैठा है जो करने से उन्हें। जो जीवन मुक्ति के आनंद वास्ते विद्वान मनन ध्यासन में प्रवृत्त होवे है सो भी अपनी इच्छा से प्रवृत्त होवे है, और मैं वेद की आज्ञा नहीं करूँगा तो मेरे को जन्म मरण संसार होवेगा, इस बुद्धि से जो क्रिया करे सो कर्तव्य कहिए हैं। इनू कर्तव्य कहिंदे है कि जे मैं ये काम नहीं करूँगा मैनू पाप लगेगा, ये वेद ने विधान किया है इस वास्ते में ये कर्म कर रहा है, उन्होंने कहते अज्ञानी, ये अज्ञानी का चिन्ह हो गया, ठीक है। जो जन्म आदिक की बुद्धि विद्वान के होवे नहीं, ये जन्म मरण की बुद्धि तो विद्वान दे है नहीं, वो तो क्या मैं असंग ब्रह्म हूँ, अजन्मा सत चित आनंद, जन्म मरण से रहित, आदि अंत से रहित, असंग अद्वितीय मैं ऐसा हूं, तो जन्म मरण कितों आएगा होएगा होता फिर, ठीक है ना। जाते अपनी इच्छा ते जो विद्वान मनन निध्यासन करे सो कर्तव्य नहीं। अपनी इच्छा से करे तो फिर वो भी कर्तव्य नहीं है, क्यों? भी जेड़ा दसवीं पास कर गया और दसवीं की पुस्तक लैके बैठा है उन्होंने की प्रयोजन सिद्ध होने वाला, वो तो पढ़ी पढ़ता रहे प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं, वो तो पास कर चुका है, इस रीति से मंद बोध अथवा दृढ़ बोध जाके होवे है ताकु कर्म उपासना कर्तव्य नहीं। और जाके बोध नहीं हुआ है किंतु आत्मा में आत्मा के जानने की तीव्र इच्छा है, तीव्र मने बहुत ज्यादा, भोकी नहीं ताका अंताकरण शुद्ध है। देख लो अंताकरण शुद्ध है, एक भी चिन्ह है केड़ा जिन्हू दृढ़ इच्छा है, पक्का विश्वास हो गया भी मैं तीव्र इच्छा है, उत्कट जिज्ञासा जिन्हू कहते हैं वो भी अंताकरण शुद्धि का ही चिन्ह है। जे अंताकरण शुद्ध ना होंगे तो इतने कोई नहीं आता, तुम आए जे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है ही है ना, कुछ ना कुछ चाहिए ता ही तो इतने आए जे। जे तुम पिंड ही मिल जाता तो फिर इतने की करना सी, तुम टीवी दे वाली बैठ के सगो ज्यादा आनंद सी, इतने की तुम रज्जू में सर्प रज्जू में सर्प है ना। देख लो की कह रहे, जाके बोध नहीं हुआ है किंतु आत्मा के जानने की तीव्र इच्छा है, भोग की नहीं ताका अंताकरण शुद्ध है। ये भी अंताकरण शुद्धि का चिन्ह देख लो, ठीक है। जाते सो भी उत्तम ही जिज्ञासु है, ताकु भी बोध के वास्ते सर्वण आदि की ही कर्तव्य है। उन्हें भी जो ज्ञान की इच्छा होवे तो भी सर्वण ही करे, कर्म विच वो भी ना लगे, कर्म उपासना दे विच। कर्म उपासना नहीं, काहे ते जो कर्म उपासना का फल है सो तो ताके पहले सिद्ध है। जेड़ा कर्म उपासना से कम करना सी वो तो पहला हो ही गया होता, अब कर्म उपासना करके की करेगा वो। हुण ये पता लग गया कर्म उपासना कादे वास्ते करदे आपा, बस अंताकरण की शुद्धि वास्ते। जेदा अंताकरण शुद्ध है वो भले ना भी करे, है ना। और जेदा अंताकरण शुद्ध नहीं है वो भी जे अगर कर्म उपासना में ना लगे, विदांत सर्वण में लग जाए तो वो ये भी वो कर देगा, ठीक है। चल गया, ज्ञान की सामान्य इच्छा ते जो सर्वण में प्रवृत्त होवे है तो अंताकरण भोग में असक्त है सो मंद जिज्ञासु है। देखो वो कहने ज्ञान की इच्छा है उदे मन विच ते सर्वण च प्रवृत्त हो गया, अब भोग में भोगों में भी थोड़ा लगा हुआ असक्त है, वो भी नहीं छड़ सकता घर बार, ठीक है। उन्हूं कहिंदे मंद जिज्ञासु, वो मंद जिज्ञासु हो गया, हाय की करा बड़ा मन करता मेरा पर की आ जंजड़े जंजाल ने, ये नहीं कि जान देंगे हाँ इन्हों ने फड़ लिया, उन्होंने थोड़ी फड़िया आपा उन्होंने फड़िया, कहें ना रख दिता मंद जिज्ञासु। जिज्ञासु तो है, जानने की इच्छा तो है पर वो छड़ नहीं सकता, तो हो गया मंद जिज्ञासु, ठीक है। ज्ञान की सामान्य इच्छा ते जो सर्वण में प्रवृत्त होवे है, ये भी बहुत बढ़िया भाई, इतना भी हो जावे तो काम नहीं है, ये ठीक से सुन लेना। ज्ञान की सामान्य इच्छा ते जो सर्वण में प्रवृत्त होवे है, प्रवृत्त मैंने लग जावे, और अंताकरण भोगन में असक्त है सो मंद जिज्ञासु है, सो भी सर्वण को त्याग के फिर कर्म उपासना में प्रवृत्त होवे नहीं। वो भी जे एक बार सर्वण में आ गया, सर्वण करने लग गया, भले वह मंद जिज्ञासु है, वह कर्म उपासना फिर भी ना करे, इतने सारे काम हो जाएंगे इसे ची, ठीक है। जो मंद जिज्ञासु है सो भी सर्वण को त्याग के फिर कर्म उपासना में प्रवृत्त होवे नहीं। जो कर्म उपासना का फल अंताकरण की शुद्धि और निश्चलता है सो ताकू सर्वण से ही हो जाएगी। देख लो ये कोई मूली थोड़ी ग्रंथ सुनने मिलते हो जे, ऐसे ग्रंथ बड़े उत्तम भागां दे नाल सुनन मिलदे भाई। जिहड़ा कर्म उपासना जिहड़ा तुसी कर्म करके उपासना करके फल प्राप्त करना सी वो तुहानूं इह सरवण ते हो जाएगा, ठीक है। सो ताकू सरवण से ही हो जाएगा, सरवण की अवृत्ति में अंताकरण का दोष दूर होए के इस जन्म विषय अथवा अन्य जन्म विषय अथवा ब्रह्मलोक विषय ज्ञान होवे है। तीन विकल्प कर दिते ने, इस जन्म च जिहड़ा सरवण च लग गया, मान लो इस जन्म च नहीं ज्ञान हुआ तो दूसरे जन्म च अवच्छ हो जाएगा, जे दूसरे जन्म च भी नहीं हुआ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਉਹ ਵਰ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਬਈ। ਅਬ੍ਰਿਤੀ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕਹਾ। ਅਬ੍ਰਿਤੀ ਮੈਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੂੰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਅਬ੍ਰਿਤੀ। ਸਰਵਣ ਕੋ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਰਮ ਉਪਾਸਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਵੇ ਹੈ ਸੋ ਅਰੂੜ ਪਤਿਤ ਕਹੀਏ ਹੈ। ਆਹ ਹੈ ਟਿੱਪਣੀ। ਹੈਂ ਹਾਂ, ਸਰਵਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਰਮ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਅਰੂੜ ਪਤਿਤ। ਅਰੂੜ ਪਤਿਤ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਉ। ਦੱਸੋ, ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਾਗ ਹੀ ਐਸੇ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਹੈਂ, ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਤਾ? ਅਰੂੜ ਪਤਿਤ। ਇਸ ਰੀਤੀ ਸੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਔਰ ਉੱਤਮ ਜਗਿਆਸੂ ਕਾ ਕਰਮ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਔਰ ਉੱਤਮ ਜਗਿਆਸੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਉਪਾਸਨਾ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਖਾਲੀ ਸਰਵਣ 'ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ, ਆ ਫਿਰ ਬਚਿਆ ਕਿਹੜਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਔਰ ਉੱਤਮ ਜਗਿਆਸੂ। ਆ ਬਚਿਆ ਮੰਦ ਜਗਿਆਸੂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਮੰਦ ਜਗਿਆਸੂ ਵੀ ਜੋ ਵਿਦਾਂਤ ਸਰਵਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਵੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਮ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭਲੇ ਮੰਦ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਉਹ ਭਲੇ ਮੰਦ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਮ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਕੀ ਜਾਂ ਕੋ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਜਾਂ ਕੋ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਭੋਗ ਮੇਂ ਬੁੱਧੀ ਅਸਕਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਰਵਣ ਮੇਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁਆ, ਐਸਾ ਜੋ ਮੰਦ ਜਗਿਆਸੂ ਤਾਂ ਕਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਔਰ ਉਪਾਸਨਾ ਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵਣ 'ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਵਣ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਦਾਂਤ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਉਪਾਸਨਾ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਉਪਾਸਨਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਾਂਤ ਸਰਵਣ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿ ਭੋਗ ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਅਸਕਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਜੋ ਬਹਿਰਮੁਖ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਬਹਿਰਮੁਖ। ਬਹਿਰਮੁਖ ਮੈਨੇ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਜੈਸੇ ਮਿਰਗ ਦੇ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਿਰਨ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾਭੀ 'ਚ ਕਸਤੂਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋਗੀ ਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ। ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਾਗਬ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਬਤ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੋਜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸਹਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਉਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਗੰਧੀ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟੀ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀ, ਫਿਰ ਸੁਗੰਧ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਗੰਧ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਮਿਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦੇ, ਹੈਂ, ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਸ ਬਸ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਕਿ ਭੋਗ ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਅਸਕਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਸੁਖੀ ਚਾਹੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ऐसा जो बहर मुख है ताका सकाम कर्म विषय अधिकार है, वो सकाम कर्म करे इच्छा रख के, निष्काम ना करे। ठीक है, जाते ज्ञानवान को कर्म उपासना का अधिकार नहीं, कर्म उपासना का ज्ञान विरोधी है और दृढ़ बोध के उपासना विरोधी नहीं परंतु मंद बोध के विरोधी है। जो दृढ़ बोध है, जिसको पक्का ज्ञान हो गया ठीक से प्रकार से, वो कर्म उपासना करे जो मर्जी करे। विशिष्ट महाराज रोज यज्ञ करते सी, तो क्या उन्हों का ज्ञान नष्ट हो गया? जो ज्ञान नष्ट हो जाता तो राम जी ने कैसे उपदेश कर देंगे? वो तो अधिकारी पुरुष से है ना, ये मतलब कहन का अधिकारी नाम ही हो भी। एक बार ज्ञान हो जाए तो नष्ट होने वाला नहीं, फैले भले वह कर्म करे नाम ही करे, वो कोई लेप नहीं है। फिर करने दे नाल उदी कोई उन्हों को लाभ नहीं, ना करने नाल उन्हों को हानि भी नहीं। यही वो कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं कर्म उपासना जो है जो जिन्हों दृढ़ ज्ञान हो गया वो दी कोई गल नहीं, वो जड़ा मंद जिज्ञासु है ना, मंद ज्ञान वाला वो कर्म उपासना उन्हों नुकसान देंगे, वो वास्ते हानिकारक है। भाई कर्म करोगे तो किदा करोगे? अब मैं पहला तुम जो करोगे कर्म की करोगे, मैं हूँ पहला अपने आप को समझोगे मैं फलाना हूँ तो तभी कर्म करोगे। कर्म के हो गए शरीर के नाल, तो पहला शरीर के बुद्धि आऊगी मैं ये हूँ, तो वह ब्रह्माकार बिरती का विरोधी है क्या सहायक? तो फिर यह बिरती का नाश करके मैं ब्रह्म हूँ, यह बिरती का नाश करके मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, ये मेरी जाति है, फिर कर्म होएगा। कर्म उपासना भी अंतःकरण शुद्धि और निश्चलता द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति के तो हेतु हैं, परंतु ज्ञान की उत्पत्ति से अनंतर जो कर्म उपासना करे तो उत्पन्न हुआ ज्ञान नष्ट हो जाएगा, जाते ज्ञान के विरोधी हैं रक्षा के नहीं। काहे ते मैं करता हूँ, देखो क्यों, ठीक से समझ लेना, मैं करता हूँ और यज्ञ आदि मेरे को कर्तव्य है, मैं कम करने वाला हूँ करता हूँ, ये यज्ञ आदि एक कर्म है ये मैं करूँगा, ऐसी बुद्धि होएगी ताई तो करेगा, ठीक है ना। और यज्ञ आदि क स्वर्ग आदि क फल है, वो फल की होगा यज्ञ का स्वर्ग फल, मैं कर्म कर मैं करता हूँ ये मेरे को कर्म है ये उदा फल है स्वर्ग आदि, ठीक है। जहाँ भेद बुद्धि से कर्म होवे है, ऐसी भेद बुद्धि बनाओगे तब कर्म होगा, तो जे कहोगे मैं ब्रह्म हूँ वो तो सारे भेदों मसल के रख देगी, तो फिर कैसे कर्म होंगे? जहाँ भेद बुद्धि से कर्म होवे है, मैं उपासक हूँ देव उपास्य है, जहाँ भेद बुद्धि से उपासना होवे है, उपासना ए तो हो गए कर्म, तो उपासना कैसे होगी? मैं उपासक हूँ उपासना करने वाला और यदि मैं कर रहा हूँ उपासना वो उपास्य है देव, दो हो गए ना, वो भी द्वैत बन गया, भेद बुद्धि वो भी आ गई उपासना भी, भेद बुद्धि में उपासना होवे है, सो दोनों प्रकार की बुद्धि सर्व ब्रह्म है, जहाँ बुद्धि को दूर करके होवे है, सब ब्रह्म है, ये बुद्धि नु दूर करके होएगी मैं अलग हूँ तो देव अलग है, जाते कर्म उपासना ज्ञान के विरोधी हैं। यद्यपि ज्ञानवान आत्मा को असंग जाने हैं तो भी देह का भोजन आदि के व्यवहार अथवा जनक आदि की न्यायी अधिकार राज्य पालन आदि के व्यवहार करे हैं, ता व्यवहार का ज्ञान विरोधी नहीं और व्यवहार ज्ञान का भी विरोधी नहीं। काहे ते कहिंदी है ना, ज्ञान दे नाल कर्म हो जाएंगे, ज्ञान दे नाल तुसी कर्म कर सकते जे, कर्म दे नाल ज्ञान नहीं होने वाला, इतना ध्यान रख लेना। केड़ा कर्म करोगे ज्ञान वास्ते? कोई कर्म है ही नहीं जिदा ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान तो होगा सरवण दे नाल, कर्म नाल तो ज्ञान हो नहीं सकता। यही वो कह रहे हैं, जो आत्म स्वरूप ज्ञान में असंग जानिया है ता आत्मा विषय जो व्यवहार प्रतीत होवे तो व्यवहार का विरोधी ज्ञान तथा ज्ञान का विरोधी व्यवहार होवे, सो विद्वान को आत्मा विषय व्यवहार प्रतीत होवे नहीं, किंतु संपूर्ण व्यवहार देह आदि के आश्रित हैं और आत्मा विषय व्यवहार सहित देह आदि का संबंध है नहीं, जहां बुद्धि से संपूर्ण व्यवहार करे हैं, इस कारण ते विद्वान की प्रवृत्ति भी निवृत्ति ही कही है। बंदा वो तो ये देख रहा है विद्वान जो पुरुष है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर के नाल कोई संबंध नहीं है, करता कर्म कोई है ही नहीं, अगर वो कम कर ही रहा है ऐस बुद्धि ना कर रहा तो की बंधन होगा उन्हें। जैसे अन्य व्यवहार ज्ञान का विरोधी नहीं, तैसे कर्म उपासना भी अन्य बहिर्मुख पुरुषन के करामने वास्ते आत्मा को असंग जान के और देहवान को अंतःकरण के आश्रित क्रिया जान के तो कर्म उपासना करे तो ज्ञान के विरोधी नहीं कहते। जो आत्मा विद्वान ने असंग जानिया है ताकू करता जान के जो कर्म उपासना करे तो ज्ञान के विरोधी होवे, ठीक है। सो आत्मा असंग रूप दृढ़ निश्चय कर्म उपासना से विद्वान का दूर होवे नहीं, जाते अबास रूप कर्म उपासना दृढ़ ज्ञान के विरोधी नहीं, इस कारण ते जनक आदि कन के अभास रूप कर्म कहे हैं करे हैं। वो खाली अभास रूप कर्म कर रहे हैं, अंतःकरण कर्म कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। जनक आदि जड़े सी वो ता ऐसे निर्लेप रहे हैं। जो आत्मा को असंग जान के और व्यवहार की न्यायी देह आदि के धर्म जान के विद्वान शुभ क्रिया करे सो अभास रूप कर्म कहे हैं। देख लो इनू कहते अभास कर्म, ताका ज्ञान से विरोध नहीं। और भाष्यकार ने कर्म उपासना का जो ज्ञान से विरोध कहया है